ओम शांति। हम ब्रह्मा कुमार रूपेश भाई जी का इस इवनिंग सेशन में स्वागत करते हैं। भाई जी हमें पावर ऑफ साइलेंस विषय पे अनुभूति कराएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पर साइंस नहीं पहुँच सकती वहाँ पे साइलेंस पहुँच सकता है। तो हम इसको सुनेंगे। भाई जी 1992 से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े थे और 94 में इन्होंने अपना जीवन इस आध्यात्म के मार्ग में समर्पित किया। तब से ये अपनी सेवाएं इस ज्ञान सरोवर परिसर में दे रहे हैं। भाई जी वर्तमान में हमारे जो 18 विंग्स हैं उनमें एक विंग है यूथ विंग और दूसरा विंग है स्पार्क विंग, उन दोनों के एक्टिव मेंबर हैं और सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पार्क विंग में है एक राजयोगा लैब भाई, जिसमें हम लोग मेडिटेशन को अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी साइलेंस को हम साइलेंस की तरह ही अनुभव करें। आप लोग सब अपना ये मैकेनिकल चीजों को थोड़ा साइड में रख दें, क्योंकि यहाँ आप जो अनुभूति करने आए हैं आप उससे वंचित ना रह जाए। ओम शांति।
ओम शांति। जरा ओम की ध्वनि से शुरुआत करें, सभी करेंगे हमारे साथ तीन बार। चलिए गहरी सांस ले लें। शांति। फिर से गहरी सांस। शांति। हमारे विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी जब भी अपने प्रवचनों की शुरुआत करती हैं तो तीन बार ओम की ध्वनि अवश्य कराती हैं सभी से, और वो इनका एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव बताती हैं जो आज के हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। वो कहती हैं पहला ओम शांति जो है वो मेरे स्वयं की शांति के लिए है, दूसरा जो ओम शांति आप बोलो वो है मेरे सगी संबंधी और साथियों की शांति के लिए, और तीसरी बार जब आप ओम शांति बोलते हैं तो वो है समाज या समूचे संसार के लिए। ये तीनों ही शांति परम आवश्यक है। मैं ये कहूंगा कि आज की समाज, आज के संसार या आज के प्रत्येक व्यक्ति की दिली चाहना शांति ही है। यदि आप देखें, अपने जीवन को ही देखें, आप पाएंगे कि वो क्षण जीवन में बहुत मूल्यवान थे जिन क्षणों में, जिन पलों में हमने बहुत सुखद और शांति के अनुभव किए थे, चाहे परिस्थितियां, बातें जो भी रही थी। हम कहीं भी आउटिंग के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उसके पीछे भी हमारा एक ध्येय थोड़ी शांति और सुकून का होता है। कई बार हम शांति को बहुत ही बाहरी रूप से समझते या सोचते हैं। हम ये मानते हैं कि कहीं दो देशों के बीच यदि युद्ध नहीं हो रहा है तो वो शांति की स्थिति है, या दो संप्रदायों या धर्मों के बीच कोई झगड़ा नहीं है तो वो शांति की स्थिति है, या दो गुटों के बीच कहीं तनातनी नहीं है तो वो शांति की स्थिति है। वास्तव में ये एक बाह्य शांति है, लेकिन आज जिस शांति की हम चर्चा करेंगे वो हमारी आंतरिक शांति है। क्योंकि शांति यदि अंदर है तो बाहर भी वही रिफ्लेक्ट होता है। यदि अंदर से मैं शांत हूं तो मेरे आसपास भी शांति अवश्य होगी। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो तो आप उसके आसपास के वातावरण को, आसपास की स्थिति को देख सकते हैं कि कैसा होता है। जैसे एक अगरबत्ती यदि जलाई जाए तो अगरबत्ती की खुशबू पूरे ही वातावरण में फैलकर खुशबू फैला देती है। वैसे यदि एक मैं यदि शांति की स्थिति में रहूं तो मेरे आसपास भी वो शांति फैल जाती है और दूसरे भी उसका अनुभव कर पाते हैं। तो शांति की शक्ति, जिसकी आज हम सबको परम आवश्यकता है, एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपने आंतरिक गुणों और विशेषताओं का विकास कर सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र में, आप अपने परिवार में हर समस्या का बहुत ही सहज और सरल ढंग से समाधान कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जिस चीज की चाहना मुझे स्वयं भी है और संसार के हर एक प्राणी को है, वो है कहां और कैसे उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं चंद बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, उसके पश्चात हम अनुभूति की ओर भी चलेंगे जो हमारे अंदर शांति की शक्ति को विकसित कर सकता है। आप जब से यहां आए हैं तब से एक मंत्र लगातार आप सुन रहे होंगे। जो भी वक्ता यहां आते हैं उनकी शुरुआत ओम शांति से, समापन ओम शांति। जहां भी आप किसी से भी मिलते हैं वहां भी आपको ये मंत्र सुनाई देता है। ये केवल उद्बोधन नहीं है, ये केवल आपस में राम राम या नमस्कार की तरह नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मूल मंत्र है जिसके अंदर शांति का सार समाया हुआ है। हम जब ओम शांति कहते हैं तो हम एक दूसरे को कुछ स्मृति दिलाते हैं जो हमें गहन शांति की ओर ले चलता है। और आज मैं उसे भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा ताकि यहां से जाने के पश्चात आप लोग जब कभी इस मंत्र को याद करें तो आपका चित्त भी शांत हो जाए। वास्तव में शांति के लिए ओम जो शब्द है, इस शब्द में ही शांति के सार तत्व समाये हुए हैं। मैं 7 स्टेप्स आपके सामने रखूंगा, उनमें से पहला यही है ओम। इस ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। इन तीनों में हमारे जीवन की शांति समाहित है। अ अर्थात हमारा आचरण। हम जब ओम शांति कहते हैं तो एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म कैसा है। क्या मेरा व्यवहार, मेरा आचरण ऐसा है जो दूसरों को शांति और सुकून देने वाला है, दूसरों को सुख देने वाला है, दूसरों को आनंद देने वाला है, दूसरे की स्थिति को ऊंचा उठाने वाला है। हम ये चेक करते हैं तो हम अपने व्यवहार को देखें। जैसे एक बात आप मानते होंगे, लंबे अरसे से आप सुनते आ रहे होंगे कि जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। यदि मैं अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों को अशांति दे रहा हूं, दूसरों का अपमान कर रहा हूं, दूसरों के रास्ते में गड्ढे खोद रहा हूं, कांटे बो रहा हूं, तो क्या मैं शांति की अपेक्षा रख सकता हूं? ना तो उनसे मुझे वो शांतिपूर्ण व्यवहार प्राप्त होगा और ना ही मेरा चित्त शांत रह पाएगा। इसलिए कहा गया हिंदी में एक बहुत अच्छी बात कही जाती, खड्ड खोदे जो और को तो को कूप तैयार। जैसा करेंगे वैसा मिलता है। तो मैं अपने व्यवहार, अपने आचरण को देखूं। आपको यहां एंगर मैनेजमेंट भी कराया गया होगा और आपने उसमें सुना होगा कि कैसे छोटी छोटी बातों से हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। अनेक जेलों में जाना हुआ है मेरा, और वहां अनेक कैदियों से मुलाकात हुई है, तो उनमें से अधिकांश लोग यही कहते हैं कि काश हमने उस एक पल के अपने आवेग को, उस एक पल के अपने क्रोध को रोक लिया होता, उस एक पल ने हमारे पूरे जीवन को पॉल्यूट कर दिया, प्रदूषित कर दिया, और आज हम यहाँ हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे विद्वान, जिनके पास ज्ञान का कोई अभाव नहीं, लेकिन फिर भी एक पल के क्रोध ने उनके जीवन में, तो हम ये देखते हैं कि मेरा व्यवहार क्या दूसरों को शांति प्रदान करने वाला है, पहला। दूसरी बात, ऊ अर्थात उच्चारण। ओम का जो दूसरा अक्षर है वो है ऊ, और ऊ अर्थात उच्चारण। मेरे बोल, मेरे उच्चारण कैसे हैं? क्या मेरे बोल ऐसे हैं जो दूसरों को शांति प्रदान करें और मुझे भी शांति प्रदान करें? कौवा और कोयल दोनों ही काले हैं, लेकिन हम सुनना चाहते हैं कोयल को। मेरे बोल भी इतने मधुर हों, ऐसे वरदानी हों, ऐसे दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले हों जो सब मेरे बोल सुनना चाहें, और मेरे बोलों को सुन करके यदि उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्नति होती है, कहीं ना कहीं यदि उन्हें सुकून मिलता है, तो उनकी जो दुआएं मुझे मिलती हैं वो मेरे चित्त को शांत करती हैं। इसलिए हम अपने उच्चारण को भी देखते हैं, मेरा उच्चारण कैसा है। आप रामायण देख लें, महाभारत देख लें, दोनों का कारण हमारे बोल, चाहे वो बोल मंथरा के थे, कैकेयी के थे, चाहे वो बोल द्रौपदी के थे, उसने इतने बड़े महाभारत का और इतने बड़े रामायण का निर्माण कर दिया। एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आए, राजा ने अपना हाथ दिखाया ज्योतिषी जी को और कहा कि महाराज देखिए कि मेरे हाथ में क्या है, क्या लिखा हुआ है। ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा और कहा, राजन आपके हाथ में ये लिखा हुआ है कि आपका पूरा खानदान आपकी आंखों के सामने ही मर जाएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, मेरा खानदान बाद में मरेगा, पहले तू मरेगा, इसको जेल में ले जाओ और कल सुबह फांसी पे चढ़ा देना। कुछ दिनों के बाद दूसरा ज्योतिषी आया, हाथ दिखाया राजन ने फिर से कि पता नहीं उस ज्योतिषी ने क्या कह दिया था और मेरे हाथ में सचमुच वैसा है या क्या है। उन्होंने हाथ दिखाया उस दूसरे ज्योतिषी को और दूसरे ज्योतिषी ने वही बात कही, लेकिन बोल में अंतर था। और दूसरे ज्योतिषी ने उन्हें ये कहा कि राजन आपके हाथ की रेखाएं ये कहती हैं कि आपकी आयु आपके पूरे खानदान वालों से कहीं ज्यादा है। राइट, बात तो वही है ना, लेकिन कहने का तरीका, ऐसे बोल हो जो सामने वाले को हर्ट ना हो, सामने वाले को तकलीफ ना हो। कई बार तो हम नोविंगली जानते हुए सामने वाले को हर्ट करते हैं, दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं और दूसरों को तकलीफ पहुंचा के सुकून महसूस करते हैं, ये ना हो, क्योंकि ये आपको वास्तविक सुकून नहीं देगा। तो मेरा उच्चारण कैसा है, कहा जाता है बोल आपको तख्त भी दिला सकता है तो तख्ते पे भी चढ़ा सकता है। इसलिए हमारे बोल ऐसे हों जो दूसरों को शांति प्रदान करने वाले हों। और ओम का तीसरा जो अक्षर है वो है म। म अर्थात मेरी मनसा, मेरी सोच। मेरी मनसा कैसी है, हमारी सोच पे हमारी शांति या अशांति बहुत निर्भर करती है। चाहूं तो मैं अपने आप को सोच सोच के परेशान और अशांत कर लूं, और चाहूं तो मैं अपनी सोच के माध्यम से ही अपने आप को शांत कर लूं। कई प्रकार के विचार हैं, आप थोड़ी समय में ही देख सकते हैं कि मेरे किस प्रकार के विचार हैं। कभी कभी हम बहुत ही जहरीले विचार अपने अंदर क्रिएट करते हैं सोच, और ऐसे जहरीले विचार जो ईर्ष्या से, घृणा से, द्वेष से प्रेरित होते हैं। और ये जहरीले विचार जहर तो जहर का ही काम करेगा ना। आजकल साइकोलॉजिस्ट ये मानने लगे हैं कि व्यक्ति 80% से ज्यादा जो बीमारियां हैं आज के व्यक्ति को, वो उसकी खुद की सोच के कारण है, उसके जहरीले सोच का ये परिणाम है कि उसको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। परिस्थितियां और बातें उसके विचारों में जहर ला रही हैं। लेकिन ओम शांति ये आपको सिखाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को श्रेष्ठता की ओर ले चलें। एक अपराधी था, कैसे हमारे अंदर जहरीले रसायन स्रावित होते हैं, ये एक एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। एक अपराधी को मृत्यु की सजा दी गई थी। कुछ साइकोलॉजिस्ट की टीम ने गवर्नमेंट से आग्रह किया कि इसको मृत्यु की सजा तो दी गई है, हम इस पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं समाज के हित के लिए, संभव है कि हमारे एक्सपेरिमेंट से इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन आप हमें इसकी परमिशन दें। गवर्नमेंट ने उन्हें परमिट किया। साइकोलॉजिस्ट की टीम, डॉक्टर्स की टीम उनके पास पहुंची और उस अपराधी को ये कहा कि तुम्हें जो फांसी की सजा दी जाने वाली थी वो सजा अब चेंज कर दी गई है और अब तुम्हें एक बहुत ही जहरीले सांप से कटवाया जाएगा और वो सांप इतना जहरीला है कि जैसे ही वो तुम्हें काटेगा वैसे ही कुछ ही मिनटों के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसे ये थॉट दे दिया गया। दूसरे दिन वो टीम पहुंच गई उसके पास, उसके सिर पे काला कपड़ा डाल दिया गया, उस अपराधी को कुछ चुभने का एहसास हुआ और थोड़ी ही देर में उसने छटपटाते हुए मौत को गले लगा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। आपको आश्चर्य होगा कि उसे किसी जहरीले सांप से नहीं कटवाया गया था, उसे एक केवल सिंपल सा पिन चुभाया गया था, एक सिंपल सा पिन। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ लोगों को कि उसके शरीर में वो सारे जहरीले तत्व विद्यमान थे जो एक जहरीले सांप के काटने से होता है। ये जहरीले रसायन कहां से आ गए? तो डॉक्टर्स ने यह प्रूव किया, हम अपनी जहरीले सोच के माध्यम से ही अपने शरीर में जहरीले रसायन स्रावित करते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। हम ऐसे जहरीले विचारों से अपने आप को दूर ले चलें। क्या ये जहरीले विचार मेरे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलेंगे या फिर मुझे बीमारियों के गर्त में धकेल देंगे? हमें सोचना है। तो जो भी ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से या मनोविकारों से ग्रस्त होकर के हम विचार करते हैं, आपके अंदर इस प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं। दूसरे प्रकार के जो विचार हैं वो विचार व्यर्थ विचार हैं। अनावश्यक रूप से सोच सोच के हम अपने आप को अशांत करते रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है और केवल 5% ही अपने प्रेजेंट में रहता है। केवल 5% जो बीत गया, 80% हम उसी के चिंतन में हैं और जो आने वाला है 15% उसकी चिंता में कि क्या होगा, कैसे होगा, और केवल 5% हम प्रेजेंट में हैं। जबकि गीता में भगवान के ये महावाक्य हैं, हे अर्जुन, तू भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में रह। वर्तमान में रहेंगे तो भविष्य को स्वतः श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इसलिए पास्ट में जो चीजें हो गई उनसे हम सीख करके आगे बढ़ें, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं। हम अपने व्यर्थ से, अपने नकारात्मक विचारों से आगे बढ़कर अब पॉजिटिव थॉट्स की ओर, सकारात्मक विचारों की ओर चलें। नकारात्मक विचारों के भी सर्कल ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा हमारे समय को नष्ट करते हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजों को। एक लेडी थी, एक प्रैक्टिकल घटना है, वो लगातार ये सोचा करती थी कि कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए और 25 इयर्स की एज में उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, क्योंकि वो लगातार ये सोचा करती थी कि कहीं ये हो ना जाए, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी लेडीज को देखा था जिन्हें ये हो चुका था और बहुत उन्हें तकलीफ होती थी। उन्होंने ये सोच सोच के अपने अंदर ये क्रिएट कर लिया। जब उन्हें बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया, सबने हाथ उठा लिया, उनके एक फैमिली डॉक्टर ने देखा कि आखिर ये जर्म्स आए कहां से, हमारी पूरी फैमिली में किसी को ये समस्या नहीं है, 25 इयर्स की एज में इसे समस्या कैसे हो गई। उसने ये पाया कि इसने अपने ही नेगेटिव थॉट से ये क्रिएट किया है। उसने थॉट प्रोसेस के माध्यम से ही उसे क्योर करना शुरू किया और जब उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने शुरू किए कि नहीं, मैं कंप्लीटली ठीक हूं, कुछ ही मंथ के बाद उनका वो ब्रेस्ट कैंसर, आश्चर्य होगा आपको, भारत के सभी डॉक्टर्स ने, विदेशों के सभी डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर दिए थे, केवल विचारों के द्वारा उनका वो ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया और आज वो ठीक है कंप्लीटली। तो कहने का भाव मैं अपने विचारों के द्वारा न केवल अपने अंदर मानसिक अशांति पैदा करता हूं, न केवल अपने अंदर समस्याओं को जन्म देता हूं, बल्कि बाहर भी मैं इस प्रकार की समस्याओं को क्रिएट करता हूं। इसलिए हम जब ओम शांति कहते हैं तो मनसा अर्थात हमेशा शुद्ध और सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं सबको, खुद को भी और दूसरों को भी। क्योंकि जितना हमारे विचारों में शुद्धता होगी, जितना ज्यादा हमारे विचारों में सकारात्मकता होगी, उतना ही ज्यादा हम अपने जीवन में श्रेष्ठता की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए इसे केवल एक मंत्र की तरह न रखें अपने पास, लेकिन इसे अपने जीवन में लाएं, आचरण, उच्चारण और अपने मनसा में श्रेष्ठता के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सार है। दूसरा स्टेप है, हम अपने मन के मालिक बने, अपने मन को हम समय दे। मालिक भी कह सकते हैं आप, पिता भी कह सकते हैं। आपने प्रथम डे पे ये सुना होगा, फर्स्ट डे आप लोगों को ये ज्ञान मिला कि आप शरीर नहीं हैं लेकिन आत्मा हैं, और आत्मा एक पिता की तरह है अपने मन बुद्धि और संस्कार रूपी बच्चों के लिए। हम अपने मन के साथ अपनी बुद्धि के साथ समय बिताया करें, समय दें उन्हें। क्योंकि जब आप अपने मन और बुद्धि रूपी बच्चों को समय देंगे, तभी उनका भटकना, तभी उनका अशांत होना खत्म होगा। आप देखेंगे कि बच्चे तभी बिगड़ते हैं जब आप उन्हें समय नहीं देते। अब हम तटस्थ होकर के देखें कि हम सभी कार्यों के लिए तो समय देते हैं, लेकिन हम अपने आप को कितना समय देते हैं। यहां से जाने के बाद यदि मुझे एक गहरी शांति अपने जीवन में लानी है और साथ ही अपने आसपास भी वातावरण में शांत माहौल बनाना है, तो मैं अपने आप को समय देना शुरू करूं, अपने मन और बुद्धि के साथ बैठूं, अपने मन रूपी बच्चे के साथ बात करूं कि हे मन, तुम कहां जाते हो, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, जहां तुम जा रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, क्या उसकी सचमुच आवश्यकता है। इसलिए हमारी दादी जानकी जी एक बहुत अच्छी बात कहती हैं, थिंक बिफोर यू थिंक। जो तुम सोच रहे हो, क्या उस सोच की आवश्यकता है। अपने मन के साथ बैठ करके बातें करें, उसे समझाएं। आप बच्चों के साथ जब बैठते हैं, उन्हें प्यार से समझाते हैं, तो बच्चे समझ जाते हैं। हमने अब तक मन को केवल यही कहा कि मन चंचल घोड़े के समान है, भागता रहता है, इसलिए उसको भागने दिया। हमने एक प्रकार से उसे सर्टिफाई कर दिया कि तुम घोड़े हो, भागते रहो। हमने ये कह दिया कि मन चंचल बच्चे की तरह है, वो बिल्कुल चंचलता करता ही रहेगा। वेग के समान है, पवन के वेग के समान भागता रहेगा। उफनती नदी के समान है, उफनेगा, इसे रोका नहीं जा सकता, हमने उसे सर्टिफाई किया। अब चेंज करें, मन को अपना एक अनुशासित बच्चा बना लें, क्योंकि आप ऐसे घोड़े पे सवारी नहीं करना चाहेंगे जिसकी लगाम आपके हाथ में ना हो, क्योंकि वो आपको कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी गिरा सकता है। राइट, क्या आप ऐसे घोड़े पे बैठेंगे? आप पहले देखते हैं कि घोड़ा ठीक ठाक है या नहीं है, लगाम है या नहीं है उसमें। आप बिना लगाम वाले या अनुशासित घोड़े पे बैठना पसंद नहीं करते। तो आप अपने मन को इस प्रकार से अनुशासनहीन न बनाएं। उसके साथ यदि आप बैठेंगे, उसके साथ प्यार से बातें करेंगे, तो स्वतः ही वो व्यर्थ और नकारात्मकता से निकल के समर्थ की ओर आएगा ही आएगा। इसे सेकेंड स्टेप ये जरूर करें, अपने आप को समय दें, अपने मन के पिता बन जाएं, अपने मन के मालिक बन जाएं, अपने मन के अच्छे मित्र बन जाएं। वो आपका ऐसा साथी बन जाएगा जो आपको सफलता की ऊंची शिखर पर ले जाएगा। जैसे उफनती नदी के को यदि बांध बना करके रोक दिया जाए, उस पानी से हम विद्युत भी उत्पन्न कर लेते हैं, उस पानी में हम मत्स्य पालन भी कर लेते हैं, उस पानी से हम नहरों के द्वारा अपने बहुत सारी फसलों का उत्पादन भी कर लेते हैं। शक्तियां हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, ये आप कि मन के साथ बैठ के आप फाइनल कर सकते हैं। ये केवल आप ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन के साथ बैठें। थर्ड स्टेप ये है कि हम एक व्रत ले लें। जिस प्रकार हम व्रत लेते हैं और व्रत लेकर के हम जल का त्याग कर देते हैं, भोजन का त्याग कर देते हैं, वैसे आप यहां से एक व्रत लेकर के जाएं, एक दृढ़ संकल्प लेकर के जाएं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मुझे शांत रहना है। आप देखेंगे कि परिस्थितियां खुद बखुद बदल जाएंगी। हमारे एक बहुत अच्छा स्लोगन है, स्वस्थिति से परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। यदि आप परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाते हैं, अपनी स्व स्थिति अर्थात अपनी आंतरिक शांति को भंग कर देते हैं, तो परिस्थितियां आप पे दिनों दिन हावी होती जाती हैं। यदि आप पावरफुल हैं तो परिस्थितियां स्वतः सॉल्व हो जाएंगी। समस्याओं को आपने देखा और समस्याओं को देखकर यदि आप घबरा गए तो समस्याएं खत्म नहीं होंगी बल्कि विकराल रूप लेती जाएंगी। इससे तीसरी बात तो ये कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बातें कैसी भी हो, मुझे अपने मन को शांत रखना है। भारतीय कैप्टन धोनी क्यों सफल है इसमें? आजकल बहुत चर्चा है उनके, क्यों सफल है वो? क्योंकि एक उनकी सबसे बड़ी विशेषता जो सबके सामने आती है वो यही कि वो बहुत कूल और काम है, बहुत शांत रहते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन कूल रहेंगे। क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम भी हर एक सिचुएशन में, हर एक बात में शांत रहें? और फोर्थ स्टेप ये है कि हम चूज करें, चयन करें, क्योंकि ये मेरे अपने हाथ में है कि मुझे क्या चयन करना है। मुझे शांति चाहिए या अशांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए या दुख चाहिए, सिचुएशन के प्रति रिएक्शन मेरे अपने हाथ में है, उसका चयन मैं खुद करता हूं। इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत रहें और चयन करें कि क्या बेहतर होगा। हम तुरंत रिएक्ट ना करें, हम तुरंत रिएक्ट कर देते, किसी ने मुझे कुछ कहा हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, बात कुछ आई हमने तुरंत रिएक्ट किया, बच्चा गलती करके आया हमने एक थप्पड़ जड़ दिया, तुरंत रिएक्ट करते हैं। अब ये तुरंत रिएक्ट करने वाली जो आदत है, इससे थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाए, थोड़ा सा परिवर्तन। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करें, क्योंकि हम हमेशा परिवर्तन के लिए दूसरे की ओर देखते हैं कि ये ऐसा है इसलिए ये परिस्थिति है, ये ऐसा है इसलिए अशांति है, ये ऐसा है इसलिए ये बात हो रही है। हम हमेशा दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से ही समस्याओं का परिवर्तन होगा। ये इस मूल बात को अवश्य यहां से लेकर के जाएं। मैं चूज करता हूं कि मुझे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इसलिए चौथा जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, चयन करना सीखें, क्या सही है और क्या गलत है। और फिफ्थ स्टेप है, स्वीकार करें कुछ बातों को। कुछ बातों को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजों को जब आप स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आपके मन को बहुत ज्यादा अशांत करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में चार बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा सा लूज है, और आप ये चाहते हैं कि आपके सभी बच्चे बहुत होशियार हों, सभी बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हो, लेकिन चूंकि बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से वो पूरी तरह विकसित नहीं है और उस प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो आप अपना सारा गुस्सा उस पे निकालते रहते हैं। आपको यहां इस सिचुएशन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार ही उसके भविष्य के लिए आपको कुछ सोचना होगा। वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता यदि आप जानते हैं, एक्सेप्ट कर लें। कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते तो उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करते रहते हैं, अपनी मानसिक शांति को भंग करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, मैं केवल एक इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया। या देश में कोई बड़ी बात हो रही है, एक ही बात कहूंगा, जो चीज मेरे हाथ में है जिसे मैं परिवर्तित कर सकता हूं उसका परिवर्तन अवश्य करें, लेकिन जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उस चीज के बारे में सोच सोच करके अपनी शांति को, अपनी स्थिति को नष्ट ना करें, भंग ना करें। यहां विद्वता का परिचय दें तो कुछ चीजों को स्वीकार अवश्य करें। सिक्स्थ स्टेप, क्षमा करें और क्षमा मांग लें। हमारे जीवन में अब तक बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी, अनेक ऐसे लोग आए होंगे जिनके साथ आपकी अनबन हुई होगी, संभव है। और जब कभी उनकी याद आपको आ जाती है या जब कभी वो आपके सामने आ जाते हैं, तुरंत ही आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। जब कभी आप थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और वो याद आता है, आपकी शांति छीन के वो चला जाता है। सिचुएशन और वो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए आज आप ये अपने आप को ये जरूर पक्का करा दें कि जो चीज हो चुकी अब मुझे या तो क्षमा करके या क्षमा मांग के उस बात को समाप्त कर देना है। ये संभव है। कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम्। तो क्षमा करना ये वीरों का कार्य है। तो यहां तो सभी वीर बैठे हुए हैं ना, कोई कमजोर तो नहीं बैठा हुआ है। क्षमा कर दें। यदि मुझे शांति चाहिए, मानसिक शांति, हम क्षमा करना सीखें। छोटन उत्पात करते रहें, आप बड़े बन के उनको क्षमा करते रहें। क्योंकि यदि कोई चीज, मान लीजिए एक छोटा सा ये पेन है, अब इसे मैंने उठाया हुआ है, ये हार्डली 5 ग्राम का होगा, 6 ग्राम का होगा। अब मैंने इसे इजीली लिफ्ट कर लिया है ना? लेकिन यदि मैं इसे 1 घंटे तक लिफ्ट करके रखता हूं, पूरे 1 दिन तक लिफ्ट करके रखता हूं, 1 हफ्ते तक लिफ्ट करके रखता हूं, क्या होगा? है ये 5 ग्राम का ही, लेकिन अब मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। संभव है कि यदि मैं उठाए ही रखूं तो संभव है कि ये हाथ ही मेरा निकालना पड़े। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को यह होमवर्क दिया था कि कल हर एक आलू का पैकेट लेकर के आएगा, उसे उठा के ही रखेगा। हर एक स्टूडेंट लेकर के आ गया, उठा के रखा, सारी क्लास में घूमना फिरना हर एक उस पैकेट को उठा के ही है। घर भी जाएंगे उठा के ही रखेंगे, दूसरे दिन आएंगे उठा के ही रखेंगे। हफ्ता हो गया, अब आलू सड़ भी गए, सबने उठा के रखा। उनको लगा कि सर ने हमें क्या होमवर्क दे दिया है कि इस आलू के पैकेट को उठा के रखो। सड़ गया, उससे बदबू आने लगी। अब उन्होंने कहा कि सर अब तो बदबू आने लगी है, अब तो इसको फेंक देने का समय है। सर ने कहा बस एक मुझे सीख देनी थी तुम लोगों को कि जो चीज बीत गई है, जो चीज सड़ गई है, जो चीज मेरे काम की नहीं है, उस चीज को फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो। वो चीज अन्यथा मुझे भारी भी करती रहेगी और साथ ही मेरे आसपास गंदगी भी फैलाती रहेगी, मच्छर और मक्खियां पैदा करती रहेंगी। इसलिए यहां से जब आप जाएं, आज के सत्र से भी, और बाबा का कमरा यहां बना हुआ है, आप बहुत प्यार से एक एक करके जो जो भी, जिनके साथ भी आपकी अनबन हुई है, आपकी फाइटिंग हुई है, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे किया हो, उनको एक एक को अपने सामने ला करके दिल से, ये ईश्वर का घर है ना, दिल से बड़े बन करके उन्हें माफ करते जाइएगा। और यदि आपको लगता है कि आपने किसी को हर्ट किया है, आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, उन्हें भी सामने लाके आप दिल से उनसे क्षमा मांग लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके दिल में कोई बोझ है, भारीपन है, वो दूर हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत और शीतल हो जाएगा। और अगला स्टेप है जो हमारे मन को पूरी तरह शांत रखता है, वो है सब कुछ प्रभु अर्पित, सब कुछ भगवान के हवाले कर दें। यहां आप देख रहे होंगे इतने बड़े विश्वविद्यालय का संचालन करने वाली हमारी दादी जी हमेशा हल्की फुल्की रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। यहां कार्य करने वाले हमारे जितने भी भाई बहनों को आप देखते होंगे लगातार लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पे सिकन नहीं, लेकिन एक मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि हरेक अपने कार्यों को प्रभु अर्पित करके चलते हैं। हम ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भी अपने गृहस्थ में रहते हुए क्या अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेवारियों को ईश्वर अर्पित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अपने बोझों को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को अर्पित करके देखें। एक बहुत सुंदर महावाक्य है परमात्मा का कि तुम अपनी चिंताएं मुझे अर्पित कर दो और तुम प्रभु चिंतन में रहो, तुम मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और ये भी कि मैं आया ही हूं तुम्हारे सारे बोझों को हरने के लिए। तुम क्यों बोझ उठा करके चल रहे हो? जैसे छोटा बच्चा कोई भी भारी चीज होता है या कोई चीज उसके काम की नहीं होती है, अपने पेरेंट्स को दे देता है कि भाई ये मेरे से नहीं संभाली जा रही है, आप रखो, करता है ना ऐसा? हम भी छोटे बच्चे बन जाएं और अपनी जो भी बोझ है, जो भी समस्याएं हैं, बातें हैं, परिस्थितियां हैं, उन्हें अर्पित करके देखें। ये एक कला जरूर सीख के जाएं। हम जन्मों जन्मों से ये गाते आ रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो उनको माता पिता जब हम कह रहे हैं, हम क्यों ना अपने सारे बोझों को उन्हें अर्पित कर दें कि आप ये संभालें। आप अर्पित करके देखें आपके जीवन में बहुत सुंदर सुकून और शांति का आप अनुभव करेंगे और ये भी महसूस करेंगे कि बोझ हल्के हो गए हैं, बोझ सरल हो गए हैं। और फाइनली स्टेप, लेकिन फाइनल स्टेप से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारे मन की शांति को, हमारे जीवन की शांति को भंग किया है। एक है हमारी इच्छाएं। इच्छाओं के पीछे हम बहुत भागे हैं, बहुत भागे हैं, और भाग भाग के हमने अपने आप को बहुत अशांत कर लिया है। इच्छा और आवश्यकता दोनों में अंतर है। आवश्यकता ठीक है, वो हमें पूर्ण करनी है, लेकिन इच्छाओं के पीछे भाग भाग के अपने मन को अशांत ना करें। साइकिल वाला चाहता है स्कूटर हो, स्कूटर वाला चाहता है कि मोटरसाइकिल हो, फिर मोटरसाइकिल वाला मारुति पे, मारुति वाला बीएमडब्ल्यू पे, मर्सिडीज पे, कहीं अंत है। ठीक है, एक लक्ष्य बनाना अपने जीवन का, अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने परिवार वालों को सुख देने के लिए, वो बेहतर है, लेकिन अपने मन को इसके पीछे बहुत ज्यादा ना भगाएं, क्योंकि इच्छाओं के लिए कहा जाता है कि इच्छाएं अपनी ही परछाई के पीछे भागने के समान है, जिसे पाया नहीं जा सकता। और शास्त्रों में भी एक बात वर्णित है कि भोजन, नींद और मैथुन, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता व्यक्ति। इन तीनों को जितना ज्यादा भोगा जाता है उतनी ही ज्यादा इनकी इच्छा और भी बढ़ती जाती है। तो हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा संयमित रखें, अपने आप को निर्धारित कर लें कि इतना है ठीक है, क्योंकि अप्राप्त के पीछे प्राप्त का सुख हम ना छोड़ दें। कई बार जो चीजें हमें मिली हुई हैं उनको हम नहीं भोगते, उनका सुख नहीं लेते, लेकिन जो अप्राप्त है उसकी इच्छा करते करते जो प्राप्त है उसके सुख से भी वंचित रह जाते हैं। जैसे किसी राजा ने कह दिया किसी को कि आज सुबह से लेके रात तक, अर्थात सूर्यास्त तक, तुम जितना दौड़ लोगे, जितने मतलब कदम चल लोगे, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। बेचारा सुबह से शाम तक दौड़ता रहा, उसके जीवन का अंत हो गया और फाइनली 3:30 पर पृथ्वी ही तो काम आई ना। इसलिए मुझे अपनी शांति, अपने सुख और अपने सुकून, इससे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, कम से कम इच्छाओं के पीछे भाग करके तो नहीं। इसी प्रकार कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं व्यक्ति की जो मनुष्य के मन को बहुत ज्यादा भगाती है। कामनाएं संबंधों में ज्यादा होती हैं कि मेरे छोटे मेरा सम्मान करें, मेरे बड़े मुझे बहुत ज्यादा प्यार दें। अपने संबंधों में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, यदि मैं घर में बड़ा हूं तो बच्चे मेरी ही बात माने, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही हो। कई बार ये भी बातें हमारे मन में और परिवार में अशांति को पैदा कर देती हैं। मैं ये पूछूं अपने आप से कि क्या मैं सभी की कामनाओं को पूर्ण कर सकता हूं, और यदि मैं सबकी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता तो मेरी भी कामनाओं को सभी कैसे पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए इस स्थिति को समझते हुए, सामने वाले की परिस्थिति को समझते हुए, मैं अपनी कामनाओं पर भी अंकुश जरूर रखूं। इसी प्रकार बहुत ज्यादा सोचने की आदत या फिर मनोविकारों से ग्रस्त होकर हम अपने मन को बहुत ज्यादा, मन की शक्तियों को नष्ट करते हैं, मन को अशांत करते हैं। मनोविकार अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये सारे मनोविकार हमारी मानसिक शांति को बहुत ज्यादा भंग करते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं, और हम इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं आज के दौर में। इसलिए इन मनोविकारों से अपने आप को मुक्त करते चलें। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, इसलिए जितना ज्यादा मैं अपने जीवन में पवित्रता को लाता जाता हूं उतनी ज्यादा मेरी शांति बढ़ती जाती है। इसलिए अपने अंदर की विकृतियों को, इन कांटों को निकालने का लक्ष्य रखें, क्योंकि कांटे अर्थात ये जो विकृतियां मनोविकार हैं कांटों के समान है जो चुप चुप के हमें तकलीफ ही देते हैं, हमारी शांति को भंग ही करेंगे। यदि आपके पैर में कांटा चुभा हुआ है तो सारे दिन क्या आप शांत रह पाएंगे? आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा। वैसे ही ये जो मनोविकार हैं, मनोविकृतियां हैं, ये बार बार चुभते हुए हमारे मन को अशांत करते रहते हैं, और यदि मेरा मन अशांत है तो मैं दूसरों को भी अशांति ही देता हूं। इसलिए हम इन विकृतियों को भी दूर करते हुए अपने मन को सुमन बनाते चलें। और इसी प्रकार फाइनली पाप कर्म हमारे मन को बहुत ज्यादा भटकाता है। पाप कर्म, क्योंकि पाप करने के बाद हमारा अंतर हमें बहुत कचोटता है कि ये गलत किया तुमने, ये गलत किया। और ये पाप कर्म हमारे अंतर की शांति को छीन लेता है। इसलिए भले हम कलयुग में हैं, लेकिन कलयुग में रहते हुए भी पाप कर्मों से दूर रहने का लक्ष्य जरूर रखें, ताकि मैं अपनी आंतरिक शांति को कायम रखूं। तो मैं फाइनली लास्ट 7 स्टेप पे था, जो हमारी शांति को बढ़ाने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजयोग मेडिटेशन। राजयोग हमारी आंतरिक शक्ति का और शांति का विकास करता है। आप कितना केजी वजन उठा सकते हैं? कितना किलो, जो आप यहां बैठे हुए हैं, कितना किलो वजन उठा सकते हैं? अपने वेट का डबल उठा सकता है, राइट? आपका वेट 75, मतलब आप कितना उठा पाएंगे? जी जी 150 किलो। जी जी लगभग आप उठा पाएंगे। अच्छा, 150 किलो से ज्यादा कोई यहां उठा सकता है? आप भाई साहब कितना उठा पाएंगे? 100 केजी। अपने बराबर ही नहीं उठा पाएंगे जी। जी बहुत शक्तिशाली माना जाओ जी जी। बिल्कुल ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चलिए आज हम 150 केजी उठा सकते हैं, राइट? इससे ज्यादा तो कोई आज इस हॉल में जो बैठे नहीं उठा सकते ना, सवाल ही नहीं। एक सत्य घटना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है और साथ ही हमारी आंतरिक शक्तियों के विकास से जुड़ा हुआ है। एक महिला अपने घर में काम कर रही थी, उनका 3 साल का बच्चा बाहर खेल रहा था। अचानक ही एक वाहन के रुकने की आवाज आई और उनके बच्चे की चीख भी उन्हें सुनाई दी। महिला अपने किचन से भागते हुए बाहर गई, देखा उन्होंने कि एक भारी वाहन उनके बच्चे के ऊपर आ गया है और आसपास कोई नहीं है। ऐसी कंडीशन में ड्राइवर तो वैसे ही भाग खड़ा होता है। अब वो वाहन लगभग 350 से 400 किलो वजन का था, आसपास कोई नहीं था। उस महिला ने क्या किया होगा? उस महिला ने उस वाहन को तब तक लिफ्ट करके रखा जब तक कि उनका बच्चा उस वाहन के नीचे से बाहर नहीं निकल आया। कहां से आ गई ये शक्ति? दूसरी मर्ता क्या न करता, ये बात भी सही है। दूसरी घटना मैं आपके सामने रखता हूं जी। 26 जनवरी सन 2001 की घटना आप लोगों को याद होगी। 26 जनवरी 2001 याद है आपको? क्या हुआ था इस दिन? गुजरात में एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक, जिसे हम शायद याद नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन एक घटना के कारण हम इसे जरूर याद रखना चाहेंगे। भुज के एक अस्पताल में एक कंप्लीटली पैरालाइज्ड व्यक्ति लेटा हुआ था, जिसे बिल्कुल ही स्पून फीडिंग उनकी की जाती थी, कोई भी काम वो नहीं कर पाते थे, सारा काम बेड पे ही होता था, कंप्लीटली पैरालाइज्ड। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भूकंप है और सारी ही दीवारें हिल रही हैं, खाटें हिल रही हैं, सब लोग भाग रहे हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ होगा? वो भी अपने बेड से उठे और तब तक भागते रहे जब तक किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच गए। और लोग जो सही सलामत थे उनकी जाने चली गई, लेकिन जो व्यक्ति पैरालाइज था वो व्यक्ति जिंदा है, आज भी जिंदा है। कहने का भाव ऐसा नहीं था कि वो कोई नाटक कर रहे हो, ऐसा नहीं था कि उनको किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज नहीं थी, मेडिकली वो कंप्लीटली पैरालाइज थे, लेकिन सिचुएशन और परिस्थिति ने उनकी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर दिया। भाव हमारे अंदर शांति की शक्ति है, उसे जागृत करने की आवश्यकता है, और इसमें मदद करता है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग हमारे जीवन में हमारी आंतरिक शक्तियों और गुणों के साथ साथ हमारी उन तमाम विशेषताओं को भी विकसित कर देता है, जिनके माध्यम से हम समाज में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और मेडिटेशन वास्तव में और कुछ नहीं, लेकिन अपना संबंध उस परम सत्ता के साथ जोड़ने का ही नाम है। एक बहुत ही विस्तृत विषय है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग 10 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, शांति की गहन अनुभूति की ओर बढ़ेंगे, इसलिए मैं सार में एक बात आप लोगों के सामने रखूंगा। जब कभी हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में आत्मचिंतन करते हुए हम अपने अंदर चलें। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मेडिटेशन करने के समय। एक चीज, हमारा मन मनन करता है, विचार करता है, और हमारी बुद्धि दृश्य देखती है। ये दोनों ही चीजें मेडिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मन के द्वारा मनन करना ताकि मन और कोई चिंतन ना करे, और बुद्धि के द्वारा दृश्य देखना। जैसे अभी यदि मैं आपको कहूं कि आप सब अपने अपने घरों में पहुंच जाएं, अपने घर के डाइनिंग हॉल में चलें, किचन में चलें, तो आप पहुंच जाएंगे ना, आप आसानी से उसे देख सकते हैं, अपने बेडरूम में पहुंच सकते हैं, अपने डाइनिंग हॉल में जा सकते हैं, अपने किचन में जा सकते हैं, आसानी से वहां परिक्रमा करके आप आ जाते हैं। आप यहां हैं, लेकिन यहां बैठे हुए आप उसे देख पा रहे हैं। ये देखने का काम बुद्धि करती है। ठीक वैसे ही यहां बैठे हुए ही हम अपने स्वस्वरूप को अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप को विजुअलाइज करें, देखें, और साथ ही इस लोक से परे, आपने प्रथम दिन के या दूसरे दिन के लेसन में सुना होगा कि इस चांद तारा गण से भी पार, सूक्ष्म लोक से पार एक अन्य लोक है जिसे हम परम धाम कहते हैं। वहां परम पिता परमात्मा का वास है और वहीं हम सब आत्माओं का भी निवास स्थान है। तो यहां बैठकर जब मेडिटेशन आप करें, अपने घर जाकर जब आप मेडिटेशन करें, तो इसी आधार पर पहले आत्मचिंतन करते हुए अंदर चलें, फिर ऊपर उस परम धाम घर में चलें जहां हमारे पिता परमात्मा का वास है। इस मेडिटेशन के माध्यम से हम उस गहन शांति का अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलें, सभी रिलैक्स होकर के बैठ जाएं एक सुंदर और गहन शांति की अनुभूति की ओर। सभी सुखासन की स्थिति में बैठे जिसमें आप पूरी तरह कंफर्टेबल हों। अपनी डायरी पेन सब एक तरफ रखते हुए आ जाएं स्वयं में। अब मुझे ये ज्ञान हो चुका है कि ये देह तो नाशवान है, पंच तत्वों से निर्मित है। ये देह मैंने इस संसार में आकर ही ग्रहण किया है, लेकिन सत्य ये है कि मैं इस देह से भिन्न अजर, अमर और अविनाशी आत्मा हूं। ये देह मेरा माध्यम है, इस देह रूपी माध्यम के आधार पर ही मैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना कर्तव्य कर रहा हूं। इस देह से पहले मैं किसी अन्य देह में रहा होऊंगा और उससे पहले किसी अन्य देह में। ये देह वास्तव में एक वस्त्र है। अब तक मैं देह के धर्मों में ही उलझा रहा कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख या ईसाई हूं, या मैं फलानी जाति या फलानी वर्ग का हूं। ये सब देह से जुड़े हुए धर्म और पहचान हैं। अब मुझे सत्य का साक्षात्कार हुआ है और मुझे अपने उसी सत्य स्वरूप की ओर चलना है। कि मैं वास्तव में शांत स्वरूप आत्मा हूं। देखें अपने आप को इस चमड़ी के अंदर एक हड्डियों का ढांचा है और हड्डियों के ढांचे के अंदर अपने मस्तिष्क में एक चमकते हुए सितारे को देखें। आत्मा का वास यही है। भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, मुझसे शांति की शीतल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। देखें अपने आप को और शांति की इन तरंगों को अनुभव करें। मुझसे शांति के ये प्रकंपन मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। इस शांति की तलाश मैं बाह्य संसार में कर रहा था और मेरी स्थिति कस्तूरी मृग की तरह थी। वास्तव में शांति रूपी कस्तूरी तो मेरे अंदर है और आज मैं उस शांति को अनुभव कर रहा हूं। मैं आत्मा, इस संसार से परे चांद तारागण से भी पार परम धाम की रहवासी हूं। मुझ आत्मा का निज धर्म भी शांति है और मेरा घर भी शांति धाम है। तो चलें अपने शांति धाम घर में ऊपर, जहां से हम आत्माएं आई हैं सृष्टि पर। चलें अपने घर में इस हॉल से ऊपर, अंतरिक्ष को पार करते हुए पहुंच जाएं अपने शांति धाम घर में, जहां चारों ओर सुंदर लाल प्रकाश विराजमान है, जहां चारों ओर गहन शांति है। मैं अपने घर की गहन शांति को अनुभव कर रहा हूं। वहीं विराजमान हैं मेरे पिता, शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव। देखें जैसे मैं आत्मा सितारे के समान चमक रही हूँ शांति धाम घर में, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी महाज्योति के रूप में अपनी शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे हैं। परमात्मा पिता से शांति की किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही हैं और मैं शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। भरी स्वयं को शांति की शक्ति से, जैसे मैं फाउंटेन के नीचे बैठी हुई हूँ, और परमात्मा पिता से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। उस महाज्योति से, अपने परम पिता से, उस शांति के सागर से स्वयं में शांति की शक्ति भरती जाए। अनुभव करें अपने सत्य स्वरूप को, मैं आत्मा शांति की भंडार बनती जा रही हूं। शांति की किरणें मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं। एकाग्र हो जाएं शांति के सागर पर। मैं आत्मा भी शांत स्वरूप, मेरा घर भी शांति धाम और मेरे पिता भी शांति के सागर। अब स्वयं को शांति से भरपूर करके मैं आत्मा अपने परम धाम घर से नीचे आ रही हूँ। जैसे चमकता हुआ सितारा ऊपर से नीचे आ रहा है, देखें अपने आप को अपने घर से नीचे आते हुए। आए और पुनः अपने इस देह में प्रवेश कर लें, भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, अनुभव करें कि देह पूरी तरह अलग है और मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, मन की मालिक हूँ। और आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं सदा अपने शांत स्वरूप स्थिति में ही स्थित रहूंगी और औरों को भी शांति का दान दूंगी। अपने इसी गहन शांति की स्थिति से अपने कार्य व्यवहार को संपन्न करूंगी। ओम शांति शांति शांति। अपनी आंखें खोल लें। यहां से जाने के पश्चात भी कम से कम 3 बार अवश्य ऐसी ही गहन शांति की अनुभूति में चलें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस अनुभूति को अपने जीवन में लाएंगे उतना ही ज्यादा आप इस शांति की खुशबू को औरों तक पहुंचा पाएंगे और अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, बातें हैं, परिस्थितियां हैं, उनका सहज समाधान कर पाएंगे। तो रोज सुबह उठते ही एक बार अवश्य ही, भले ही 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए शांति में बैठें। और जैसे अभी हम लोगों ने यात्रा की अपने अंतर जगत की, वैसे ही अंतर जगत की यात्रा करते हुए अपने आप को उस परम सत्ता से जोड़ें और अपने आप को चार्ज करें। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, वैसे ही अपने आप को चार्ज करने की आवश्यकता है। दिन में बीच बीच में थोड़ी देर समय निकाल के भी खुद को चार्ज करें और रात को सोने से पहले अपना सब कुछ उस प्रभु पिता को अर्पित करके और साथ ही उससे कनेक्ट होकर के सो जाएं। आपका जीवन बहुत ही सरल, सहज और शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आप सबके लिए मेरी यही हृदय की शुभकामनाएं कि आप यहाँ से शांति का एक ऐसा गुलदस्ता लेकर के जाएं जिसकी खुशबू न केवल आपके परिवार वालों को मिले बल्कि आपके दफ्तर वालों को और संसार वालों को भी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।